एहेस्केल अध्याय 12। एहेस्केल अध्याय 12 पद 1 और 2। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, तू बलवा करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो है परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे बलवा करने वाले घराने के हैं। आपको ध्यान होगा कि यशया ने कहा था, यशाया अध्याय 6:10, वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिरावे और चंगे हो जाए। यरमिया ने उन पर दोष लगाया, तुम ना देखते हो और ना सुनते हो। दाऊद ने कहा, मूर्ति पूजक मूर्तियों के से हो गए, वे ना तो देखती ना सुनती और ना ही चल पाती है। यीशु ने कहा, यशया ने इस पीढ़ी के लिए बिल्कुल ठीक ही कहा था कि वे कान होते हुए सुनेंगे नहीं और आंखें होते हुए देखेंगे नहीं। परमेश्वर कहता है वे बलवा करने वाले घराने के हैं। यहूदी अपने पितरों और अपने इतिहास पर गर्व करते हैं, वे अपने पितरों का सम्मान करते हैं, वे मृतकों का आदर करते हैं और अपने उत्तराधिकार को प्रतिष्ठित मानते हैं। स्तिफनुस कैसे समस्या में पड़ गया था, क्योंकि उसने महासभा में खड़े होकर कह दिया था कि ऐसा कौन सा भविष्यद्वक्ता है जिसे उनके पूर्वजों ने नहीं मार डाला। तुम अपने बाप दादों का सम्मान करते हो परंतु वे भविष्यत वक्ताओं के हथियारे हैं और तुम उनसे भी बुरे हो, क्योंकि तुमने तो उसे मार डाला जिसकी वे भविष्यत वक्ता भविष्यवाणी करते थे। इस पर वे अत्यधिक क्रोधित हुए और उसे पतरवाह कर दिया। इस समय शौल जो प्रेरित पौलुस बना वही खड़ा उनके कपड़ों की निगरानी कर रहा था। यहां परमेश्वर एहेस्केल से कहता है, तू बलवा करने वाले घराने के मध्य रहता है, जिनके पास देखने के लिए आंखें तो है परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे बलवा करने वाले घराने के हैं। एहेस्केल अध्याय 12 पद 3। इसलिए हे मनुष्य के संतान, दिन को बंदवाई के समान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना, उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना। यद्यपि वे बलवा करने वाले घराने के हैं तो भी संभव है कि वे ध्यान दें। उनके विद्रोह करने के पीछे उनकी मानसिकता ये है कि वे बंदवाई से अपने देश लौटना चाहते हैं। उन्होंने झूठे भविष्यत वक्ताओं की बात मानी, परंतु तू अपना सामान लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा। हो सकता है कि वे तुझे देखें, सुने और मान जाए। इसमें शक नहीं कि वे आनुवंशिक विद्रोही है। एहेस्केल अध्याय 12 पद 4 से लेकर 6 तक। सो तू दिन को उनके देखते हुए बंदवाई के सामान की नाई अपना सामान निकालना, और तब तू सांझ को बंदवाई में जाने वाले के समान उनके देखते हुए उठ जाना। उनके देखते हुए भीत को फोड़कर उसी से अपना सामान निकालना, उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठाकर अंधेरे में निकालना, और अपना मुंह ढापे रहना कि भूमि तुझे ना देख पड़े, क्योंकि मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए एक चिन्ह ठहराया है। एहेस्केल इसराइल के घराने के लिए एक सजीव उदाहरण, एक संदेश होगा। उनको ये प्रयोगात्मक संदेश दे, अपना सामान उठा, अपनी दीवार में छेद करके उसमें से छिपकर बाहर निकल और अपना सामान लदे घूमता फिरता रह, बस अपने घर से बाहर निकल जा। एहेस्केल अध्याय 12 पद 7 से लेकर 9 तक। उस आज्ञा के अनुसार मैंने वैसा ही किया। दिन को मैंने अपना सामान बंधुआई के सामान की नाई निकाला और सांझ को अपने हाथ से भीत को फोड़ा। फिर अंधेरे में सामान को निकालकर उनके देखते हुए कंधे पर उठाए हुए चला गया। बिहान को यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या इसराइल के घराने ने, अर्थात उस बलवा करने वाले घराने ने, तुझसे ये नहीं पूछा कि ये तू क्या करता है? इस व्यवहार के पीछे उद्देश्य ये था कि बोलने की अपेक्षा वो देखें और अचंभित होकर एक प्रश्न पूछे, तू ये क्या कर रहा है कि दीवार में छेद करके अपने सामान के साथ बाहर निकल रहा है और घूमता फिर रहा है? एहेस्केल अध्याय 12 पद 10 और 11। तू उनसे कहे कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, ये प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान पुरुष और इसराइल के सारे घराने के विषय में है जिसके बीच में वे रहते हैं। तो उनसे कह, मैं तुम्हारे लिए चिन्ह हूं, जैसे मैंने किया है वैसे ही इसराइली लोगों से भी किया जाएगा। उनको उठकर बंधुआई में जाना पड़ेगा। तुम मुझे तो देख रहे हो, ये यरूशलेम के हाकिमों की स्थिति का प्रदर्शन है। वे इसी प्रकार अपने घरों के दीवारों में छेद करके रातों रात भागने की कोशिश करेंगे। एहेस्केल अध्याय 12 पद 12 और 13। उनके बीच में जो प्रधान सिदकाया है सो अंधेरे में अपने कंधे पर बोझ उठाए हुए निकलेगा। वो अपना सामान निकालने के लिए भीत को फोड़ेगा और अपना मुंह ढापे रहेगा कि उसको भूमि ना देख पड़े, और मैं उस पर अपना जाल फैलाऊंगा और वो मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसे कसदियों के देश के बाबुल में पहुंचा दूंगा। यद्यपि वो उस नगर में मर जाएगा तो भी उसको ना देखेगा। ये प्रधान सिदकिय्याह से संबंधित भविष्यवाणी है। हमारे पास धर्मशास्त्र में इसका प्रमाण है कि उसने और उसके पुत्रों ने रातों रात भागने का प्रयास किया और वे यरीहो के मैदानों तक निकल गए थे, जहां कसदियों ने पीछा करके उन्हें पकड़ा और उन्हें रिबला में नबुकदनेज़र के सामने लाए। नबुकदनेज़र ने सिदकिय्याह के देखते देखते सिदकिय्याह के पुत्रों की हत्या कर दी और सिदकिय्याह की आंखें निकालकर सिदकिय्याह को बाबुल बंधुआई में ले गया। जैसा एहेस्केल ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। वो बाबुल को देख नहीं पाया क्योंकि वो अंधा था। ये परमेश्वर का अद्भुत वचन है जो पूरा हुआ। यदि परमेश्वर पवित्र आत्मा भविष्यत वक्ताओं पर प्रकट ना करता तो वे कैसे ऐसे सही भविष्यवाणी कर सकते थे? प्रभु ने कहा, एहेस्केल अध्याय 12 पद 14 से लेकर 16 तक, और जितने उसके सहायक उसके पास होंगे उनको और उसकी सारी टोलियों को मैं सब दिशाओं में तितर बितर कर दूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलवाऊंगा, और जब मैं उन्हें जाति जाति में तितर बितर कर दूंगा और देश में छिन्न भिन्न कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परंतु मैं उनमें से थोड़े से लोगों को तलवार, भूख और मरी से बचा रखूंगा, और वे अपने घृणित काम उन जातियों में भकान करेंगे जिनके बीच में वे पहुंचेंगे, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। यहां भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वह कुछ लोगों को बचाकर अवश्य रखेगा जबकि अन्यों का नाश किया जाएगा। एहेस्केल अध्याय 12 पद 17 और 18। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, कांपते हुए अपनी रोटी खाना और थर थराते और चिंता करते हुए अपना पानी पीना, अर्थात थोड़ा थोड़ा पानी पीना और एक एक घूंट को गिनना। खाना खाते समय और पानी पीते समय थर थराना जैसे कि बहुत डरा हुआ हो। एहस्केल अध्याय 12 पद 19। और इस देश के लोगों से यूं कहना, ये भविष्यद्वक्ता बड़े ही सजीव रहे होंगे। इसका प्रमुख कारण था कि परमेश्वर इसराइलियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, क्योंकि केवल कहने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके इस विचित्र व्यवहार से लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न हो, एहस्केल तू ये क्या कर रहा है? यही तो परमेश्वर का उद्देश्य था। ये सारी योजना इसलिए बनाई गई थी कि वो उनका ध्यान आकर्षित करें और तब उन्हें अपना वचन सुनाए। वे सुनते नहीं थे, वे अन्य जातियों की रीति पर चलते हैं। उन्होंने परमेश्वर की ओर अपने कान बंद कर लिए हैं, परंतु ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर उन्हें तब भी अपना संदेश देना चाहता था। यदि हम सीधे तरीके से नहीं सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे चारों ओर की परिस्थितियों और घटनाओं के द्वारा अपना संदेश पहुंचाता रहता है। लोगों से खाते और पीते समय ऐसा कहना, एजेकिल अध्याय 12 पद 19 से लेकर 22 तक। प्रभु यहोवा यरूशलेम और इसराइल के देश के निवासियों के विषय में यूं कहता है, वे अपनी रोटी चिंता के साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मय के साथ पिएंगे, क्योंकि देश अपने सब रहने वालों के उपद्रव के कारण अपनी सारी भरपूरी से रहित हो जाएगा और बसे हुए नगर उजड़ जाएंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, ये क्या कहावत है जो तुम लोग इसराइल के देश में कहा करते हो कि दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई? बहुत हुआ सुनते सुनते कुछ होता तो है नहीं? भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती है। तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है कि प्रभु आने वाला है, अंत समय निकट है? वे भी जो यरूशलेम में थे ऐसे ही मानसिकता रखते थे। दंड उनके सिर पर मंडरा रहा था, बस कुछ ही दिन बाकी थे और वे कहते थे, उनकी कहावत है, दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। पत्रस अपनी दूसरी पत्री के अध्याय 3 में कहता है, दूसरा पत्रस अध्याय 3 पद 3 और 4, अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतीक्षा कहां गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। परंतु पत्रस ने बल देकर कहा कि प्रभु का दिन अवश्य आएगा। परमेश्वर उनकी इस कहावत की ओर एहस्केल का ध्यान आकर्षित करता है, एहस्केल अध्याय 12 पद 23 से लेकर 25 तक। इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं इस कहावत को बंद करूंगा और ये कहावत इसराइल पर फिर ना चलेगी। और तू उनसे कह कि वो दिन निकट आ गया है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर है, क्योंकि इसराइल के घराने में ना तो और अधिक झूठे दर्शन की कोई बात है और ना कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी। क्योंकि मैं यहोवा हूं, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूं वो पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब न होगा। परंतु हे बलवा करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूंगा और वो पूरा हो जाएगा। तुम्हारे पोतों और परपोतों के नहीं, अपितु तुम्हारे ही दिनों में। एहेस्केल अध्याय 12 पद 25 से लेकर 28 तक। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, देख, इस्राएल के घराने के लोग ये कह रहे हैं कि जो दर्शन वो देखता है वो बहुत दिन के बाद पूरा होने वाला है, और कि वो दूर के समय के विषय में भविष्यवाणी करता है। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में विलंब ना होगा, वरन जो वचन मैं कहूं सो वो निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। एक वर्ष के भीतर ही ये भविष्यवाणी पूरी हो गई थी।